blessed, happy. Then Subal took the clothes of Srimati Radhika and decorated himself like Srimati Radhika. And he gave his turban, his all clothes to Srimati Radhika, and Radhika became Subal. He was so beautiful like Srimati Radhika. Anyone cannot recognize her, him. So he took the all the dress of Subal and went to Radha Kund and met, and Krishna became, and Radha became so happy. This pastime took place also on Ashtami. So in Radha Damodar temple and all other temple, also Madan Mohan Govindaji, everywhere we will see yesterday that Srimati Radhika is in the shape of Subal, having turbans, having bansi, having dhoti and kurta, and taking a cloth on her breast. So this day is very pious. We do pranam to this pastime of Krishna. Also, yesterday was the auspicious day, the Dasaras. And when this Dasaras will be paripakva, matured, then this Chaitanya Mahaprabhu will show that I am Radha plus Krishna, and he will appear in that shape. And then he, if his qualification and standard is up to Shringar Rasa, then he can see and serve Chaitanya Mahaprabhu in that. अब हम लोग थोड़ा सा मन शिक्षा में जो बाकी थोड़ा सा रह गया भजन रहस्य उसी का थोड़ा सा बाकी रह गया जो एक श्लोक हमने जदई छेरावासम पतिजनी जुअद्वंदम तच्चेत परिचरितम अरभिलाष स्वरूपम श्री रूपम सगण मिह तस्याग्रजमपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मरणम तदातं शुणु मनः यदि इच्छे सा इच्छे आवासम कल इसकी व्याख्या हमने की यदि वृंदावन थे के ब्रजेते थे के रागात्मिक भावे थे राग युक्त हुए यदि ओखाने थाकता इच्छा है एम राधा कृष्ण किशोर किशोरी के यदि सेवा करवार यदि लालसा थाके इच्छा यदि एक्टिव थाके लालसा ताले स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्रीरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सगण रघुनाथ अन्य अन्य समस्त गोस्वामी संगे तादर के स्मर नित्यम नित्य काल स्मरण कर एम ताके दंडत प्रणाम कर नम এটা কালকে আমি বলেছি। এর মধ্যে যে কিরকম স্মরণ করতে হবে তার পদ্ধতি কিছু কিছু হিন্ট দিয়েছি। এখানে বুঝব সুবল সখা ইত্যাদি, সুবল সুদাম ইত্যাদি এবং মা যশোদা নন্দ বাবা ইত্যাদি রোহিণী মা এবং ললিতা বিশাখা ইত্যাদি রূপ মঞ্জরি ইত্যাদি এমনকি বৃন্দাবনের লতা গুল্ম নদী পর্বত যা কিছু দেখছ ও সকলই কৃষ্ণের প্রতি রাগাত্মিক ভাব আছে, ওদের আত্মাতেই অনুরাগ আছে কৃষ্ণের প্রতি। এই যেন ব্রজের যত কিছু আছে সব কিছুই রাগাত্মিক, পশু ময়ূর কোকিল সুপ শাড়ি এরা সব হচ্ছে রাগাত্মিক, রাগানুগা কোনো নয়, ব্রজেতে রাগানুগার স্থান নাই। অনেকে এটা বুঝতে ভুল করে যে রাগানুগার মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ কে গোপীগণ বলে, কিন্তু এটা ভ্রম, তাহাদের সিদ্ধান্তই ঠিক হল না। এই জন্য ওরা হচ্ছে রাগাত্মিক, রাগাত্মিক মধ্যে সবথেকে বৈশিষ্ট্য ওদের, শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না, নিজের নিজের ভাবে তেজসোদাত শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য ভাবে সখাগণ সখ্য ভাবতে শ্রেষ্ঠ, গোপীগণ নিজের ভাবতে শ্রেষ্ঠ, সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এইটা বলা যাবে না, কিন্তু তাহাদের বৈশিষ্ট্য আছে। রসেন উৎকৃষ্টতে কৃষ্ণ, রসেন উৎকৃষ্টতে গোপী, এইরকম হয়ে বলবে রসা রসস্থিতি। কিন্তু বলবো যে শ্রেষ্ঠ গড়বড় হয়ে যাবে, এই যেন খুব মেপে তুলে এইসব কথা বলতে হয়। এই যেন গোপীগণকে যদি বলা যায় রাগানুগা আত্মিকা, রাগানুগা মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, মহা অনর্থ, এটা গুলি বুঝতে হবে। এই জন্য প্রথমে এইসব গুলি গ্রন্থগুলি অনুশীলন করব, আর এই অনুশীলন করে যারা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব তাহাদের সঙ্গে তার চরণ ধুলিতে দু চার জন্ম জন্ম জন্মে, এখানে বলছে প্রতি জনু মানে জন্মে জন্মে এদেরকে স্মরণ করবে। কাকে? স্বরূপ রায়রামানন্দ রূপ গোস্বাম জন্মে জন্ম, এক জন্মেতে সিদ্ধি হয় না, হয়তো লাখো জন্মেতে যদি সিদ্ধি হয়ে যায়, যেরকম হোক কি পণ্ডিত বলেছিলেন না, কোটি জন্মে তোমার মুকুন্দ দত্ত বলেছে, তুমি খড়জটিয়া বেটা, তোমার কি হবে না, কোটি কৃপা করব না। তখন তিনি কাউকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মহাপ্রভুকে, প্রভু আমার উপরে কখন কৃপা তাহার হবে, কখন আমাকে ডেকে আমাকে এই কৃষ্ণ প্রেম দিবে, ওই কোটি জন্মে পরে দিব। তখন বাইরে দাঁড়াতে নাচতে লাগলেন নৃত্য কথা, কোটি জন্মে পরে তো খুব অল্প সময়, আরে কোটি জন্মে তো বহুত কম সময় হ্যাঁ, আমার তো ধারণা ছিল না যে কোটি জন্মে পরে পাবেন, কিন্তু কোটি জন্মে পরে আমি পাবো তো, ব্যাস আনন্দে একবারে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। বহু বহু সংস্কার, বহু বহু দিনে পরে, তবে রাগানুগা ভক্তিতে একটি লোভ হয় এমনি হয় না, কোটি জন্মের সুকৃতিতে ভক্তি হবে, এটা ঠিক সুকৃতিতে ভক্তি হবে, কিন্তু কোটি কোটি জন্মের সুকৃতিতেও প্রেম ভক্তি এই যে রাগানুগা এটা হবে না, লোভ, এই লোভটা হওয়া মহা দুষ্কর, কোটিস্বপি মহামুনি। এই জন্য বলি ভাবটা হচ্ছে সুদুর্লভ, ভক্তিটা কিছু বিশেষ না, একটা নাম করলেও ভক্তি হবে, বৃন্দাবনেতে আসলে হবে, একটু শ্রদ্ধাপূর্বক বৈষ্ণবদনকে একটা কিছু খাওয়াইয়ে দিলে হবে, তাদের আদর সৎকার একটু প্রণাম করে, এটাও ভক্তি। কিন্তু ভাই অভি উত্তমা ভক্তি হবে না, সঙ্গ সিদ্ধা আরোপ সিদ্ধা গৌনা তারপরে কর্মমিশ্রা জ্ঞান মিশ্রা তপ মিশ্রা এইসব গুলি হবে আর কি, আরোপ সিদ্ধা সঙ্গ সিদ্ধায়িত্ব বললাম, আর কর্মমিশ্রা জ্ঞান মিশ্রা গৌণী মিশ্রা কর্ম প্রধান ভূতা জ্ঞান প্রধান ভূতা ভক্তি প্রধান ভূতা কর্ম ভক্তি প্রধান ভূতা জ্ঞান যোগ তপস্যা এইসব গুলি হবে। কিন্তু এই শুদ্ধ ভক্তি রাগানুগাতে লোভ হওয়া ভারী ভারী, কোটি জন্ম সুকৃতির না লভ্যতে। এই জন্য বলছেন যে জন্মে জন্মেতে তুমি স্বরূপ দামোদরকে কেঁদে কেঁদে ডাকবে, হার উপগোস্বামী অনুগ্রহ কর, হে রায় রামানন্দ আমাকে কৃপা করুন, হে রূপ গোস্বামী তোমার ছাড়া আমার আর কোন অবলম্বন নাই। এই রূপ গোস্বামীকে যারা সর্বস্ব মনে মনে করেন ওদের চরণেতে ধুলিতে আগে যাও, নিজের গুরু পাদ পদ্ম রাগানুগা মধ্যে প্রধান আছেন এখন বর্তমানে, তাহাদেরকে দণ্ডত প্রণাম করে, হা প্রভু আপনি অনুগ্রহ করুন, কখন আপনি আমাকে রূপ গোস্বামীর পাদ পদ্মেতে সমর্পণ করবেন। নরোত্তম ঠাকুর বলছেন না প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লইয়া যাবে পাদ পদ্মে আমার সমর্পণ, এরকম কোটি কোটি জন্মে যাউক তখন মহাপ্রভু করুণা দ্রবিত হয়ে যাবে, বলে আচ্ছা আচ্ছা এই জন্মে তো তোমাকে করে দিচ্ছি। এগুলি করুণা পাবার এগুলি হচ্ছে লক্ষ্মী। এই জন্য বলছেন এখন তিনি এখানে রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে ছিল ভক্তি বর্ণ ঠাকুর এই মনঃশিক্ষার ভজন দর্পণেতে এগুলি করেছেন, যার না ভজন পিপাসু লোক, যে ভজন কি পিপাসা জিনকে অন্দর মে হ্যা ইন গ্রন্থ কো দেখেঙ্গে গুরুজি সে সব চিজ শুনেঙ্গে
और जिसको भजन की भी पासा नहीं है तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। नाचेंगे कूदेंगे, हद्दबार देखेंगे, अमरनाथ की गुफा देखेंगे, पशुपति क्या पशुपतिनाथ के देखेंगे, और सागर में 10 बार स्नान करने जाएंगे, सब तीर्थ एक बार, आठ तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार। फिर जन जवार नाम ना ले आर कार धरछी आर जाबो ना ओखने। किंतु जरा भजन पिपासु व्यक्ति ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर भजन दर्पण दिए पढ़व सब अनुशीलन करब एर मध्य एक टेस्ट आसु सब गुले निश्चित रूप चैतन्य चरितामृत पढ़े जे अनुशीलन करबे रागानुगा भक्ति प्रति लोभ माने आसबे ही निश्चित रूपे ते आसबे आ जदि ना आसे ताले पढ़े ने अनुशीलन ही करे ना एटा बुझते होबे। रागानुगार मूल ग्रंथ होच्छे এই চৈতন্য চরিতামৃত, এর মূল হচ্ছে আরো ওই জীব গোস্বামীর সন্দর্ভগুলি, তার মধ্যে আবার প্রীতি সন্দর্ভ, আর তার মূল হচ্ছে কি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর রূপ গোস্বামী, ভক্তির স্বামী সিন্ধু, আর উজ্জ্বল নীলমণি, ওই দুটি নাটক ইত্যাদি সব। হংস দূতকে কমে মনে করব না, দানকেলি কমুদি কমে মনে করব না, উনার সবটা গ্রন্থই হচ্ছে ওইগুলি। আর এইগুলি অনুশীলন করে পড়ে আর শুনে কাহার যদি রাগানুগার প্রতি লোভ হয় নাই, তার মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন দুর্ভাগা জন্মগ্রহণ করে না, এইটা বুঝে রাখব। না না ব্রজে আসবার কি দরকার, বৃন্দাবনে সেবা কুঞ্জ আর ওখানে দেখতে যাবে কি করতে, ওই বংশীবট কি করতে যাবে, কি দরকার গোপীশ্বরকে কেন দর্শন করবে, লালসা কেন, যদি এতে নাই। এই জন্য এইসবগুলি বিচার করতে হবে। এই জন্য শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তার ভজন দর্পণেতে লিখেছেন স্বরাগম, মানে স্বরাগম স্বরাগম রাগের সহিত, যদি রাধা কৃষ্ণের রাগের সহিত বৃন্দাবনের মধ্যে থাকবার যদি লালসা থাকে, লালসা মানে লোভ, আর যদি এইখানে থেকে রাধা কৃষ্ণের সেবা করবার যদি লালসা থাকে, তাহলে কি করবে, স্বরাগম মানে তখন বলছেন রাগাত্মিকা ভক্তি যার আছে। এই ব্রজবাসীগণের মধ্যে গো মৃগ শুক পশু পক্ষীয়তেও আছে, সুস্পষ্ট রূপেতে বিরাজমান, বিরাজন্তিম অভিব্যক্তম ব্রজবাসী জনাদিষু রাগাত্মিকাম অনুসিতা যাসা রাগানুগ উচ্যতে। এই পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা ময়ূর সুকসারি মধ্যে যে বিরাজন্তি সুস্পষ্ট ভাবেন, যে ভাবটা রয়েছে কৃষ্ণ প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, ওদেরকে রাগ আত্মিকা বলে, ওদের আত্মাতেই রাগ, ওদের দেহ দেহিতে ভেদ নাই, ওদেরই ভাবকে রাগ আত্মিকা বলে। ওই কোন বৈষ্ণবের নিকটেতে শাস্ত্রেতে শ্রীমৎ ভাগবতেতে রূপ গোস্বামীর গ্রন্থেতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থেতে শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থেতে এইগুলিকে দেখে বিশেষ করে বৈষ্ণব মুখেতে কাহার প্রতি একটু ওইটাকে পাওয়ার লালসা উৎপন্ন হয়ে যায়, তাহলে রাগানুগার ওইটি অধিকার, যে যে কোনো স্থিতিতে হোক, এমনকি ওই কৃষ্ণ করুণামৃতের কর্তা বিল্বমঙ্গলরত্ন দুরাচারীও যদি থাকে আর ওই স্থিতিতেও যদি এসে যায় ওই লোভ, ওই লোভ আসাতে দুরাচার একেবারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়, কৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগময় ভাবনা পাওয়ার জন্য লোভ উৎপন্ন হয়ে যাবে, তখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে কিসে এটা পাওয়া যাবে এইটা বিচার করবে। লোভ উৎপন্ন হওয়াতে কেন যে হবে এর কোনই নাই, কোন যুক্তি থাকতে পারে না, শাস্ত্রের যুক্তিও নাই, শাস্ত্র যুক্তি শাস্ত্রগুলিকে অপেক্ষা রাখে না এই লোভটা কেন হল,
মিষ্টি খাবার পয়সা নাই পকেটে, কেন রসগোল্লা খাবার লোভ হলো? এর যুক্তি কি? যুক্তি ওই লোভটা রাখে না। আমি কোয়ালিফায়ার ভেদার আয়ের ন, আমি এর জন্য যোগ্য আছি কি না আছি, লোভটাই অপেক্ষা রাখেন। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে কোন একটা দরিদ্র কালো কলুঠা একটা লোক দেখল, ভিক্টোরিয়া মহারানী আসছে পরম সুন্দরী, তখন হোল ওয়ার্ল্ডের সে রানী, তাহার অঙ্গরক্ষক তাহার কত লোক আছে, আর ওইটা দেখে তাহার মনে হয় এইরকম স্ত্রী যদি পেতাম আমি তাহলে খুবই ভালো হতো। কেন লোভ করলে? পাতে পারে সেটি ভিক্টোরিয়াকে পাবে না, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তিতে যদি এইরকম লোভ হয় সেটি পেয়ে যাবে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ভিক্টোরিয়া নয়, কিন্তু কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকা প্রীতি, এরকম লালসা থাকে আরসিক বৈষ্ণবগণের আর যোগ্য বৈষ্ণবের যদি সঙ্গ হয়। আর এই শাস্ত্র থেকে যুক্তি দেখবে কিরকম তাহাকে পাওয়া যায়, এই যুক্তি দরকার আছে শাস্ত্র থেকে, এই যুক্তি অপেক্ষা। কোন যুক্তি করলে কি করলে হবে? তখন বৈষ্ণবরা বলবে তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্তনানুক্রমেণ রসনা মনসি নিয়োজ্য তিষ্ঠন ব্রজে। আর ব্রজবনেশ্বরী তন্নাথত্বে স্মরণম তদা শুনুং মন, এইটুকু। আরো আর সব বলে পঞ্চামৃতমিদম রূপ গোস্বামীর ওই শ্লোকটা বলবে। তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাছে যাবে, জিজ্ঞাসা করবে কৃষ্ণে আমি কৃষ্ণের ওই সেবা কিসে পাবো? তিনি সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরাবাসী মূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন সকল সাধন শ্রেষ্ঠ, এই পঞ্চঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচ। তখন বলবে, তখন এইসব বলি করতে লাগবে, ঢুকতে লাগবে যে এরকম কে বৈষ্ণব, কার আনুগত্যতে আমি ভজন করব। গুরুদেবকে জানাবে, গুরুদেব বলবেন যদি নিজে যোগ্য হন তাহলে তাকে বলবেন, আর বলবে না তুমি জীব গোস্বামীর নিকটে যাও। কে বলল? কে বলল যে জীব গোস্বামীর নিকটে যাও? হৃদয় চৈতন্য। কাকে বললেন? শ্যামানন্দ। এতে কোন ক্ষতি না, দুজনই একই রকম। যদুনন্দন আচার্য ছিলেন, তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মন্ত্র দিয়েছেন, আবার তিনি আবার গেলেন কোথায়, স্বরূপ দামোদর চরণে তাহাকে সঁপিয়ে দিলেন। এইসব বলে বিচার রাখতে হবে, আর না তো যদি উনি এই যেরকম হতে আরো দেখা যায় কোনো ভেদে নেই। এই জীব গোস্বামী নাই, শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ওই কি ছিলেন দুজন ব্রজনাকার, দেখা দিলেন বলেন যে পুরীতে যা, পুরীতে যাচ্ছে আমার। আচ্ছা যা তো গোপাল গুরুর সঙ্গে তো সঙ্গ করবে, তো তাহলে গোপাল গুরু কি করলেন, কিরকম সুন্দর, যে যাহাতে ছিল তাহাকে ওই মধ্যে অবস্থিত করে দিলেন। এই জন্য শিক্ষা দীক্ষা গুরু, যদি শিক্ষা গুরু ওইরকম থাকে দীক্ষা গুরু ওইরকম থাকে তাহলে দুজনে এক তত্ত্ব একই অভিন্ন অখণ্ড নিত্যানন্দ প্রবোচন অখণ্ড গুরুতত্ত্ব। এই জন্য যারা বৈষ্ণব আছে সবই আমাদের গুরু মহারাজ, বৈষ্ণব মাত্রই গুরু। এই সবগুলি বিচার করে দিয়ে এখন রাগময়ী ভক্তি বললেন, সাধন ভক্তি ওইটাকে পাওয়ার জন্য সাধন ভক্তি। এই সাধন ভক্তি পরিপক্ক হলে হয়ে যায় ভাব ভক্তি, আর ভাব ভক্তি পরিক অবস্থাতে তাকে বলে প্রেমা ভক্তি। এই জন্য শ্লোক বললেন আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গ, অত ভজন ক্রিয়া তত অনর্থ নিবৃত্তি, সাপ তত নিষ্ঠা রুচি তত আশা শক্তি তত ভাব প্রেমা ভুদঞ্চতি সাধকা নাম এম প্রেমনা প্রাদুর্ভাবে ধর্ম। এই শ্লোক সম্বন্ধে আমরা অন্য সময় বলেছি। এখন যেখানে তে রাগ নাই উৎপন্ন হয় নাই, রাগ উৎপন্ন নাই, কিন্তু তাহাকে প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তি উপজাতে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে কিন্তু অনুরাগ নাই, তখন তারা কি করবে? বৈদিক ভক্তি করবে। শাস্ত্রেতে বলা হয়েছে চারু বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাই ভজে স্বকর্ম করিতে সে রোগ হবে ওর শ্লোক শ্রীমদ ভাগবতের চারু বর্ণাশ্রমী যদি কার্য করে নিজে সুষ্ঠু ভাবে আকৃষ্ট ভজন না করে তখন নরকে পড়ে মরবে। আর বলছেন যে যত রকমের বিধি নিষেধ তার মধ্যে সব থেকে বেশি নিষেধ কি কৃষ্ণকে কখনো ভুলো না, আর কৃষ্ণকে সবসময় স্মরণ করবে নচেত নরকে যাবে। এইরকম শাস্ত্রে বহু সমস্ত শাসন বাক্য আছে, এটাকে শুনে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। কতগুলি লোক আর আছে দেখা তুমি ভজন না করলে নরকে যাব, আজ তার নরকে আমি কেন যাব, আমি কি করলে হয় কৃষ্ণের নাম করো শঙ্কর এগুলি ভক্তি, এটা যে সাধন। আর যেখানে রাগ উৎপন্ন হয়ে গেছে সেটি যারা গাতনি, আর রাগ পাওয়ার জন্য লোভ উৎপন্ন হয়েছে এইটা হচ্ছে রাগানুগা ভক্তির অধিকার। অভি ভক্তি অভি হয় না এই রাগানুগা, অভি লোভ উৎপন্ন মাত্র হয়েছে। এই জন্য যদি কারো লালসা থাকে এইরকম হয় তাহলে স্বরূপ দামোদরকে রামানন্দ সব রূপ গোস্বামী ইত্যাদি গুরুবর্গকে গুরুদেবকে ডাকতে হবে, প্রেম পূর্বক তাদেরকে স্মরণ করতে হবে আর ডাকতে হবে, তাকে নমস্কার করতে হবে। আজকে এই পর্যন্ত থাক, কাল থেকে আমরা যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন রহস্য সেই সমস্ত আরম্ভ করব। মাঝখানে যেখানে অক্রূর ব্রহ্মদেবে স্নান করেছিলেন আর যেখানে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থেকে গেলেন আর কৃষ্ণ আর বলরাম বসুদেব কৃষ্ণ ওরা ওখান থেকে মথুরা ফিরে গেলেন, আর যেখানে গোপরা আর গোপরা দর্শন করেছিলেন কৃষ্ণকে অন্যায় করে দিয়ে ব্রহ্মলোক তাহার, তা সেই স্থান আছে ওখানে। যদি কেউ যেতে চায় আজকাল পরশুর মধ্যে যখন ব্যবস্থা হবে কমলাপতি ইত্যাদি বলে দিবেন আপনার সেই রকম যাবে। আর চার তারিখে কি পাঁচ তারিখে, পাঁচ তারিখে বেলবনে রাখা আছে, ওখান থেকে সব যাত্রীরা গেছে বাইরে হরদ্বার ইত্যাদি, ওখান থেকে ফিরে আসলে তারপরে ওখানে যাবে। আর পান্ডাজি তো আজকেও আসে নাই, তো
বড়ই প্রভাবশালী আচার্য থে অভি দৃষ্টি ছাত্র ছায়া অনুভব করতে কহীন দূর নেই
স্নিগ্ধ সেবকোঁ কে হৃদয় মে ও সব সময় আবির্ভূত রহতে হ্যায়। শিষ্য আপনে গুরু কো এসা নেই সমঝতা যে ও মর গয়ে অব হাই নেই হ্যাঁ নেই সমঝতে, জো দূর রহনে বালে ও ভি সমঝেঙ্গে যে গুরুজি হমারে হৃদয় হমারে সাথী মে হ্যায়, এসা সমঝনা চাহিয়ে। ও গৃহস্থ ভক্তোঁ কে লিয়ে চার পাঁচ বার মৌকা এসা দেতে থে জিসে কি ও লোক সাধুওঁ কা সঙ্গ পা সকে, আর নয় প্রকার কি ভক্তি ইয়া পাঁচ প্রকার কি ভক্তি কা ও লোক অনুশীলন কর সকে সহজ রূপ মে কর সকে, জো ঘর মে সম্ভবপর নহি হ্যায়। ইসলিয়ে বর্ষ কে প্রারম্ভ মে নবদ্বীপ ধাম কি পরিক্রমা করাতে থে জিসমে দশ বারহ হাজার লোক অভি তক আতে হ্যায়, উনহোনে আরম্ভ কিয়া থা, উসমে প্রত্যেক ব্যক্তিওঁ কে চাহে অর না চাহে সভি লোক श्रीमन महाप्रभु की धाम की परिक्रमा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो जो लीलाएं की उनमें उनको भ्रमण कराते, उसकी धूली लगे, उसका महात्म्य समझे और साधुओं का उपदेश उसमें हो। अरे ऊपर बसना है, तुलसी जी की परिक्रमा, मंगल आरती, प्रतिदिन दो बार तीन बार हरि कथा सुनने का सुयोग अपने आप मिलता था। इच्छा करे जो घर में नहीं हो सकता था वो अपने आप तुलसी जी की परिक्रमा इत्यादि हो जाना, धाम में आना, प्रसाद सेवा, मंदिर की परिक्रमा, तत्व तो उपदेश, साधन भजन कैसा हमारा होना चाहिए। एक बार घड़ी में जैसे कि दम दिया जाता है सात दिन के बाद में, ऐसे वो दम दे देते थे जो कि चार महीना चलता था या तीन महीना चले, और उसके बाद में आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती थी, सबको लेकर के पूरी जाते थे या चुचुड़ा और नवदीप में रथ यात्रा कर दिया, जिसमें कि सब भक्त लोग जो कि दीक्षित और ये हैं सभी लोग आते थे, जिसमें कि आठ नौ दिन तक हरि कथा सुनने के लिए प्रचुर मिलता था। कैसे साधु जीवन व्यतीत होना चाहिए, कैसे हरि नाम करेंगे, कैसे भजन करेंगे, ये सब की पद्धति बतलाते थे। ये बीते बीते कार्तिक का महीना आ जाता था, बस कार्तिक में सबको लेकर के किसी न किसी एक तीर्थ में जरूर जाते थे, कभी वृंदावन धाम, प्राय वृंदावन धाम, कभी द्वारका, कभी दक्षिण के तीर्थ समूह, कहीं काशी, कहीं प्रयाग में, इस तरह से, किंतु विशेष स्थल में पुरी धाम में और यहां नवदीप धाम में। ये कार्तिक का महीना होता था, उसमें एक महीना जैसे कि इस बार किया गया ऐसे एक महीने का सुयोग देते थे, और इसके बाद में व्यास पूजा आ जाती थी। व्यास पूजा में, गुरु पूजा में सब लोग आते थे। इस तरह से वर्ष में कुछ दिन सुयोग देते थे। अधिक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई गुण नहीं था, किंतु उन महापुरुष ने हम लोगों को ला करके और भक्ति रस का एक थोड़ा सा स्वादन कराया। अब इसी से समझ लीजिए कि उनके कोटि गुणों में से एक गुण भी आंशिक रूप में हम में नहीं है, हम लोगों में नहीं है, और हम लोगों के पीछे लाखों लोग घूम रहे हैं और अपने को समझते हैं कि इन लोगों के पास में जाने से भक्ति होगी, तो उनकी कितनी महानता होगी। बड़े सुंदर व्यक्तित्व के थे, अत्यंत सुंदर, ये इसकी त्वचाएं अत्यंत कोमल, स्निग्ध, जो उनके चारों की सेवा किए होंगे वो लोग समझेंगे, दूसरे नहीं समझ सकते। होठ बड़े पतले, अंगुलियां आर्टिस्ट, थिन आर्टिस्ट,
आर्टिस्टिक फिंगर,
खूब पतली पतली अंत में, बहुत सुंदर, और भुजाएं कुछ लंबी थी। बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करके ही नतमस्तक हो जाते, वो प्रश्न ही नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व देख करके। तो हम लोग इस पर गर्व करते हैं कि ऐसे महापुरुष का हम लोगों ने आश्रय ग्रहण किया, गर्व है हम लोगों, किंतु दुख है, नाम नाम मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्पिता निमत स्मरण नकाल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव इदृशम महा। ऐसे महापुरुष का संग करके भी जैसा हमको लाभ करना चाहिए थे उनके संग से भक्ति, वो हम लोग नहीं कर सके, यही इसी का एक मलाल रह जाता है, दुख होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में बहुत से ऐसे लोग थे जो महाप्रभु का कोई आदर नहीं कर सके, उनसे कुछ ले ही नहीं सके, जो कि अपना प्रेम धन वितरण करने के लिए जगत में आए। इसलिए इस महापुरुष की मैं कितनी महत्ता वर्णन करूं, किंतु फिर भी थोड़ा सा जो स्पर्श कर दिया उसका आप लोग देख रहे हैं। जिन जिनको उन्होंने स्पर्श किया सभी लोगों का ऐसा, पूज्यपाद बामन महाराज जी ने उनकी बड़ी सेवा की एकदम निष्कपट रूप में। देखिए उनका विचार कैसा, वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के डिक्शनरी हैं। ऐसे ही सबको जिसको जिसको छू दिया वही वैसा बन गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब संन्यास जब देने को हम लोगों को हुआ, हम लोगों ने कहा कि हम लोग संन्यास के योग्य ही नहीं है। सिद्धार्थ महाराज जी कहां, गुरु महाराज जी कहां, भारती महाराज जी कहां, सिद्धांति महाराज जी कहां, माधव महाराज जी दिग्विजयी सब लोग, नेमी महाराज जी दिग्विजयी लोग, जब संस्कृत का उच्चारण करते तो एकदम एक फुट ऊंचा हो जाते थे। कैसा व्यक्तित्व सुंदर और सब विद्याओं का भंडार, युक्ति विचारधारा। हम लोगों ने तीनों ने भी रिफ्यूज कर दिया, हम लोग नहीं संन्यास लेंगे। किंतु नहीं होने पर भी देखो उन्होंने अनुग्रह करके दिया। अब मैं हम लोग जहां पर कोई वृक्ष कोई नहीं है वहां पर एरंड वृक्ष द्रुमायते, जहां पर कोई वृक्ष नहीं होता वहां पर छोटे छोटे ईकमन के पेड़, छोटे छोटे रेणी के पेड़, एरंडी वृक्ष का, एरंडी समझते हैं जिसमें रेणी का फल लगता है और तेल बनता है, तो जहां पर पीपल के, बट के, आम के, पाकुड़ इत्यादि के वृक्ष नहीं है, मौलिश्री का वृक्ष नहीं है, वहां पर एरंडी द्रुमायते। जब उन लोगों का हम विचार करते हैं और अपनी भक्ति का जब तुलना देते हैं तो देखते हैं कि हम लोग नथिंग के बराबर हैं। तभी हम लोगों की बात आज सुनने वाले बहुत हैं जो सुन रहे हैं, तब हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हीं की दो एक उपदेशों को बेच कर, हम लोग बेच करके जीवित हैं। असल लोग इतना आदर करते हैं, सचमुच में उनका पूरा ही हम लोग ग्रहण करते तो न जाने क्या हो जाता। तो आज मैं बनवाई वालों के लिए जो कल जा रहे हैं भोर में, उनसे कोई वार्तालाप हमारी अधिक नहीं हो सकी। जब मैं बंबई जाता हूं तो हमारी सेवा इतनी करते हैं कि मैं उनका ऋण से भार से दब जाता हूं। इसलिए उनको दो एक हमारे गुरु जी के जो उपदेश हैं, हमारे आचार्यों के उपदेश हैं, भागवत का जो संदेश है जीवों के लिए, मैं दो एक संक्षेप में उसकी अवतारणा करूंगा। विशेष करके गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, साधकों के लिए, साधारण साधकों के लिए क्या कर्तव्य है, इस पर विचार करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय में विभिन्न देश विदेश के सब भक्त लोग आते थे। उन लोगों ने निवेदन किया जब प्रभु रथ यात्रा समाप्त हुई, हम लोगों ने रथ यात्रा का दर्शन किया, हम लोग रथ को चलते हुए हम लोग बहुत बार देखा है, इसके लिए हम लोग नहीं आते। रथ कैसे चलता है, कितनी भीड़ होती है, और उस समय में पुरी में जाकर के पुरी धाम में हम लोग बहुत से चीजें खरीदते हैं, बाजार करते हैं, इसके लिए हम लोग नहीं आए हैं। अब जैसे वृंदावन में हम लोग आए तो पहले से हम लोग प्लान बना करके आते हैं, जब वृंदावन में जा रहे हैं तो वहां से कौन कौन चीज का बाजार करेंगे, कौन कौन चीज सौदा लेंगे, ये बाजार। शुद्ध भक्तों का ये सब नहीं होता। साधु संघ में हम हरि भजन के लिए क्या चीज हम ग्रहण कर सकेंगे, इस पर वो अधिक ध्यान देते हैं। तो महाप्रभु के समय कोई किसी चीज के लिए नहीं आता था। रथ यात्रा का जो प्राण था चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और उनका चरित्र और उनकी शिक्षाएं जीवन से, इसको ग्रहण करने के लिए लाखों भक्त कहां बंगाल से कहां कहां से गौड़ीय वैष्णव सब आते थे, उड़ीसा के लोग भक्त आते थे। उनकी एक एक लीला चरित्र में कितनी असंख्य खूब गहरी शिक्षाएं भरी रहती थी। उनका एक भी ऐसा जीवन चरित्र नहीं है जिसमें कि शिक्षाएं परिपूर्ण रूप से भरी हुई नहीं रहती थी। साधारण एक बात भी सबके लिए शिक्षा की होती थी। कुलीन ग्राम के किसी भक्त ने कहा, जी प्रभु रथ यात्रा हमारा देखना सार्थक हुआ। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी गया में गए तो ईश्वरपुरी पास से भेंट हुई, उन्होंने कहा कि गया यात्रा सफल, हमारी गया यात्रा सफल हुई। कैसे? पिंडदान दिया इसलिए? नहीं नहीं, वहां पर गदाधर जी का पाठ पद्म है, उसको देखने से हमारी जीवन यात्रा सफल हो गई, या पुनपुन नदी में पिंडदान कर दिया हमारी यात्रा सफल? नहीं, जतखान देखिलाम चरण तुम्हार, तुम्हारे चरण कमलों को जब से देखा तब से हमारा यात्रा ये सफल हो गई। क्या देखा? आंख से देखा? नहीं नहीं प्रभु, मैंने कान से जब से आपके चरण कमलों को दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? कान से। आंख से तो सभी दर्शन करते हैं, उसका उतना महत्व नहीं है। आप लोगों ने जो वृंदावन का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया, ये सब आंख से दर्शन करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नास्तिक भी जाकर के देख सकते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी दर्शन करते हैं, तो सबका एक ही फल तो होना चाहिए। एक भक्त वहां पर दर्शन कर रहा है, एक कर्मी ज्ञानी जा रहा है, सबको गिरिराज जी एक ही समान तो चीज देंगे, इन आंखों से देखने से एक ही जैसा तो देखेंगे। नहीं, एक आदमी को पत्थर दिखता है, कोई यहां पर प्राकृतिक सीनरी देखता है, कोई देखता है यहां पर बहुत धूल है, कोई कुछ देखता है, कहते यहां का पानी गंदा है, ऐसे देखते हैं आंखों से। आंख से देखने की चेष्टा न की जाए, हम लोग अधिकांश रूप में आंख से ही देखने की चेष्टा करते हैं। भाड़ा दिया बस का, 500 रुपया दे दिया, सबको दिखला दिया, बस हमारा सब हो गया। नहीं, ये तो देखना ही नहीं, पैसे के द्वारा जो चीज होता है वो नहीं दिखता है। श्रद्धा पूर्वक कानों से उसको दर्शन करने की चेष्टा की जाए, यही हमारे आचार्य वर्गों की गुरु परंपरा की धारा है। एक आदमी आंख का बिना भी रहने वाला उसका दर्शन कर सकता है ब्रज का, यदि श्रद्धा से उन कान से उसको सुने। तो कुलिन ग्राम के व्यक्ति ने कहा, पूछा भक्त ने, जे प्रभु आपके रथ यात्रा हम लोग आए थे, आज सफल हुई, अब बतलाइए अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? अब आप लोग भी बंबई जा रहे हैं, लौट रहे हैं, कोई अपने अब सभी लोग दो चार दिनों में ही लौटेंगे, बंगाल से प्राय 250 आदमी आए हैं ये यात्री भी, और फॉरेन कंट्री से दे हैव कम अबाउट 35-40 फॉरेन डिवोटीज, दे विल आल्सो रिटर्न, वो लोग भी लौटेंगे, क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी कहते हैं, देखो कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का नाम सब समय करना, और वैष्णवों की सेवा करना। उन्होंने कृष्ण नाम का कीर्तन, हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, ये तो कर लेंगे, ये बात तो ठीक है, या और भगवान के जो नाम के कीर्तन है कर सकेंगे हम लोग, और कृष्ण की सेवा भी उनका अर्चन भी कर लेंगे हम लोग, किंतु वैष्णव सेवा हम लोग कैसे कर सकेंगे? हम कैसे समझेंगे ये वैष्णव? क्या तिलक और गले की माला से हम लोग समझ लें कि ये वैष्णव है, या लाल कपड़े से समझें ये वैष्णव है? कैसे समझेंगे? तो महाप्रभु जी ने पहले वर्ष ये बतलाया, जो एक नाम भी करता है उसको सजातीय समझकर उसको मन से आदर करो। दूसरे वर्ष बतलाया, जो निरंतर नाम करते हैं उनको साधु वैष्णव समझ करके उसकी सेवा करो। तीसरे वर्ष में क्या बतलाया? जिसके देखने से ही अपने आप कृष्ण नाम आ जाए, हृदय निर्मल हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, गुरु वैष्णव की सेवा करने की स्पृहा जब उठे, उनको उत्तम वैष्णव मान करके संपूर्ण रूप से उनकी सेवा करो, अपने हृदय को उनको समर्पित अनकंडीशनली। और यदि वो संत हो निंदा इत्यादि शून्य भागवत के रसिक भाव भक्त हो और राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त हो और विशेष करके राधानुगा में भी रूपानुग हो तो अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर दो। किंतु यह समझना भी बड़ा भारी कठिन है कि रूपानुग कौन है, अभी आप लोग अभी नहीं समझ सकेंगे। इसी तरह से उन्होंने बताया जिनकी भगवान में अभी कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ है, उनको कहोगे ठाकुर जी की बाल गोपाल की लड्डू गोपाल की शिव विग्रह की सेवा करना अर्चन करना, जो जिनकी श्रद्धा कुछ दृढ़ हुई है किंतु नहीं जाने देह सिद्धांत तो, अभी नहीं जानते हैं किंतु श्रद्धा हुई है, किसी के कहने से आप तलवार नहीं होंगे किंतु सिद्धांत अभी कुछ भक्ति का और जानना बाकी है, उनको मध्यम अधिकारी जान। और जबकि सिद्धांत में निपुण है और श्रद्धा भी दृढ़ हो गई है उनको उत्तम भागवत समझो, इनकी सेवा। ऐसे वैष्णव मिलना भी सर्वत्र बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन है, भगवान का मिलना सहज हो सकता है किंतु ऐसे वैष्णव का दर्शन और उनका मिलना और उनकी सेवा को प्राप्त करना और बहुत भी कठिन है। यदि मिल जाए जाकर जो जीवन अब हम लोग भव सागर को पार करके अब कृष्ण के चरण में हम जाकर के अब गोलोक वृंदावन पहुंचने वाले हैं, ऐसे भक्तों का यदि संग हो जाए तो क्या श्लोक है, ऐसे भक्तों का संग हो जाने से समझे ये भव पार अब आगमन अब समाप्त होना है। भवाप वर्गो भवित जदा तरही चुत सत्समागम सत्समागम जरही तदैव परावरे से कई जाए थे रति, ये अथा भाव सागर है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, कब से जन्म हो रहा है कब तक जन्म होगा कोई भी आर पार नहीं। भाव माने होता है होना, जन्म और मरण होना, सो मत कोई आंख में माया पत्थर रख रही है, ये भाव सागर है जन्माना और मरना। यदि साधु संग ऐसा मिल जाए ऐसा योग्य समझो कि हमारा भाव सागर अब बंद होने वाला है, जिसका भाव सागर बंद होना आता है भगवान की कृपा से ऐसे संतों का भगवान ही मिलन करने की व्यवस्था करा देती है, समझो कि अब भाव सागर हम पार करना चाहते हैं अब हो ही गया। इसलिए भगवान का दर्शन सहज हो सकता है किंतु ऐसे महात्माओं का दर्शन बड़ा भारी कठिन है, इसलिए ऐसे वैष्णव की सेवा कहां मिलेगी, पूछो भैया महाराज जी आपकी क्या सेवा करूं तो ऐसे वैष्णव क्या कहेंगे, रुपए की उनको जरूरत है नहीं, किस चीज की जरूरत है, कोई वैभव की जरूरत नहीं, कोई विभूति की जरूरत नहीं, किसी चीज की उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्या सेवा करेंगे। इसलिए साधारण आदमी नहीं समझ सकता है, जो कुछ मध्यम अधिकारी के होंगे उन लोगों को सेवा कुछ कर सकते हैं, उनको यदि प्रेम भरा भगवान की कोई कथा सुना दी जाए और यदि तुम्हारी रुचि देखेंगे जो बहुत सुंदर रुचि भगवान का भजन करने के लिए हुई है तो अपने आप द्रवित हो जाए, तस्मिन महन मुखरिता मधुरी चरित्र, अब अपने आप द्रवित होकर के हृदय से अपने आप कृष्ण की लीला कथाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाएं अपने आप द्रवित होकर के बहने लग जाएगी, और बहुत किनारे से जब उसका एक स्प्रिंकल भी उसका एक छीटा भी किसी के शरीर पर पड़ गया तो वो बस धन्य हो जाएगा, ऐसे महात्माओं का बहुत नहीं होते, सुदुर्लभा बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे संत जिनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, दिन रात भगवत चर्चा में डूबे रहते हैं, जिनको शरीर की सुध-बुध नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने ये सब शिक्षाएं दी, हम लोग को भी आचरण करना चाहिए। अड़चन भी समझना चाहिए, सब अड़चन एक समान नहीं है। बिना भाव का अड़चन वो अड़चन अभी नहीं, विधि विधान के सहित जो अर्चन करते हैं राधा कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की उपासना है उनका अर्चन है, राधा कृष्ण का अर्चन नहीं होता, ये भी समझना बड़ा भारी मुश्किल है। तभी हम लोग कहते हैं ये करो। यदि गृहस्थों के लिए कुछ करना है तो उनको अजामिल का उपाख्यान स्मरण करना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए अजामिल महादुराचारी, पहली स्त्री को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया और एक नीच जाति की वेश्या से भी अधिक गरीबी थी, एक औरत पर आसक्त हो गया, धर्म सब कर्म सब कुछ जलांजलि दे दिया, सत्कर्म भी जलांजलि दे दिया, डकैती लूटपाट ये सब करने लग गया, यहां तक कि हत्या तक भी करने लगा, शराब इत्यादि की तो कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो जघन्य जो नहीं किया, किंतु मरते समय में उसके कुछ दिन पहले उसको एक बच्चा हुआ, अवैध अवैध संतान ही, अपने रखा भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उसी दिन ही वो भवसागर पार कर गया, जिस दिन नाम रखा उसी दिन पहले एक नाम से ही, और बाकी जो उसका नाम हुआ नारायण इधर आजा गोदी में बैठ, नारायण इधर आजा नारायण पानी पिएगा, ये सब उसका अभ्यास हुआ। क्यों हुआ? कहते हैं कि उसका नाम अपराध नहीं था, इसलिए वो नहीं समझता था कि इसका कुछ फल हुआ। वो कब समझा? जब मृत्यु का समय आया, मरने लगा, उस समय में नारायण नाम पुकार अपने बच्चे के लिए प्रीति के साथ ममता से, उसकी आसक्ति थी, अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, और उस समय देखा जो तीन दूत आए बड़े जघन्य रूप वाले, एक वचन से पाप होता है, एक शरीर से, तन मन वचन तीनों से पाप होते हैं, गाली गलौज देना, दूसरों का अपमान करना, ये वचन का हुआ, तन से किसी को मारना पीटना, ये सब तन मन और वचन तीनों का पाप जब होता है तो वही जमदूत आते हैं, तीन जमदूत आए और साथ साथ में चार और विष्णु के दूत आ गए। जमदूत ने कहा, भगवान के दूतों ने कहा जी तुम लोग किस लिए आए, कहां से आ रहे? उन्होंने कहा तुम कौन है, कहां से आया? अजय हम लोग विष्णु के दूत हैं, तुम लोग कौन है? तो हम लोग जमराज के दूत हैं। तो किस लिए आए? इसके समान जघन्य पापी और कोई नहीं है, इसलिए इसके लिए हम लोग आए हैं, इसको ले जाएंगे आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को, और दंड देंगे, गर्म तेल में खोलते हुए उसको छोड़ेंगे, इसको बार बार काटेंगे, कुत्ते से इसका शरीर नोचवाएंगे, और नाना ने जा पाप जितना किया उसका सब भोगाएंगे। तुम लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हो, इसने जो कुछ पाप किया था एक नाम के द्वारा ही यह सब समाप्त हो चुका है, तुम लोग पापी इसको देखता है। बस धर्म तत्व ऐसा सुनाया जिसने जीवन में सुना नहीं था। कहे अवश्य होकर के यदि कोई चलते फिरते फिसलते हुए भी छींकते समय में यदि पैर फिसल जाए और भगवान का नाम ले ले, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। तो इसने तो कितनी बार कहा है, बस दोनों में विवाद हुआ, इन्होंने मार करके उसे भगा दिया और इसको बचा दिया। जब वो चले गए जम के दूध तो कहते अरे मैंने जो ये जो नाम बच्चे का रखा इससे हमारा इतना पाप दूर हो गया, यदि मैं भक्ति और श्रद्धा के साथ में गुरु से ग्रहण करके इस नाम को करता तो न जाने क्या फल होता। मैं भवसागर से जन्म मृत्यु से मैं पार हो गया, मैं मरा नहीं, मृत्यु को भी मैंने जीत लिया उसी नाम से। बस उन पर विश्वास हुआ, उन्होंने सोचा आप ही लोग हमारे गुरु हैं, और उनका चरण छूना चाहा, इतने में अंतर ध्यान हो गए। अब वहां से बच गया। देखो एक कृष्ण नाम के द्वारा जैसे तैसे भी वो हो, किंतु मृत्यु से उसकी रक्षा हो गई। इसे खूब विश्वास रखना, यह बात परम सत्य है। भागवत की बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती। हमने जीवन में भी इसका कुछ कुछ कभी कभी अनुभव किया है, दो एक बार ऐसी घटनाएं हुई, इसलिए कभी तनिक भी अविश्वास मत करना। बस वो उठ करके और हरिद्वार चला गया, साधुओं के समाज में चला गया, और वहां रह करके निर्जन स्थान में भगवान का नाम करना आरंभ, नारायण इत्यादि जो नाम उनका है, जो मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते, जैसा भागवत में लिखा है ऐसा मंत्र जपने लगा। कुछ दिनों के बाद में ही देखा कि वही चारों आए हैं, और बोले वो चारों तुम्हारे लिए ये विमान खड़ा है बैकुंठ जाने के लिए। उन्होंने कहा जे प्रभु पहले तो हमारे बात का उत्तर दीजिए, उस दिन मैं आपसे बातचीत करना चाहता था, बातचीत नहीं किया, और स्पर्श करना चाहे स्पर्श भी नहीं करने दिया, और आज खुद ही आप कहते कि विमान में चलो हमको लेकर के। तो उन्होंने कहा उस दिन तुम्हारी योग्यता नहीं थी, मृत्यु से तो तुम्हारी रक्षा हो गई थी, तुम्हारे पाप भी दूर हो गए थे, किंतु तुम्हारा हृदय क्षेत्र और आत्मा अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं थी। अब तुमने हरिद्वार में आकर के जो भगवान नाम का इतना बड़े प्रेम के साथ में अनन्य चित्त होकर के जो तुमने भजन किया, इसके द्वारा बहुत तुमको योग्यता प्राप्त हुई। तुमने हम लोगों के बतलाए हुए पथ से और उस मंत्र का जप किया, इसलिए ऐसा हुआ है। बस उसको विमान में लेकर के अब बस चले। तो इसी तरह से गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, यह नाम ऐसा है हरे कृष्ण नाम, जो दीक्षा भी नहीं हुई है कोई बात नहीं, पुरस्कार इत्यादि की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही करो हरे नाम हरे कृष्ण, वही तुमको गुरु भी मिला देगा, और जो कुछ करना होगा वो सब व्यवस्था कर देगा हरे नाम, इतनी सामर्थ्य वो स्वयं भगवान है, इस चीज को समझो। इसलिए खूब श्रद्धा के साथ में जरूर हरिनाम करना। जितने प्रकार के नाम भगवान के हैं, जितने प्रकार के भी हैं, उन सब नामों में ये श्रेष्ठ नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जितने प्रकार के भगवान, इसमें रस भरा पड़ा है। पहले मैं नहीं समझता था, मुझको डाउट था इस विषय में, मुझको ऐसा लगता था जो हरे कृष्ण कहने के अपेक्षा राधा कृष्ण कहना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो डायरेक्ट राधा कृष्ण है, राधा गोविंद राधा मदन मोहन राधा श्याम सुंदर राधे राधे, ये सब करना मैं समझता था ये डायरेक्ट कृष्ण का नाम, और हरे कृष्ण से मालूम होता है ये कुछ इनडायरेक्ट है, उसमें सोचना पड़ता है हरे कृष्ण का अर्थ ही है राधा का, ऐसा सोचना पड़ता है दुर्गत भाव। किंतु जैसे जैसे गुरु कृपा उपलब्ध हुई, मैंने देखा जैसे बाबा इसमें इतना भाव है, विशेष करके वो गोपाल गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी कविकर्णपुर जीव गोस्वामी अग्नि किराय का बाख्या सखी में कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, चाहे वो लंपट हो धूप्त हो सठ हो जैसे भी हो, हमारे प्राणनाथ हैं, उनके अतिरिक्त मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती। यदि वो दूर रख करके हमें पीस दें तभी, अपने पैरों के तले रखकर तभी मेरे प्राणनाथ, और यदि सब गोपियों को और सबको छोड़ करके और हमें आलिंगन कर लें तभी हमारे प्राणनाथ ही हैं, मैं उनके बिना बच नहीं सकती। हमारे वो प्राण के भी नाथ हैं। अब इस एक एक श्लोक के अंदर में कितनी कितनी सब लीलाएं भरी पड़ी है, समस्त भागवत समझो इसी सब श्लोकों में पति पड़ते हैं। साधक के लिए साधकोचित, मुक्त महापुरुषों के लिए इसमें अखिल वृंदावन का ब्रज का रस इसमें भरा पड़ा है। इसको राय रामानंद और स्वर्ग दामोदर विशेष करके इसकी पुष्टि कैसे करते थे, विद्यापति के मैथिल कोकिल के पदों से, जयदेव की चंडीदास के पदों से, श्रीमद् भागवत के ये सब पदों से और दूसरे दूसरे बिल्व मंगल इत्यादि जो पूर्व जब हो गए हैं उन सब के पदों से इनको करते, महाप्रभु भावी में अविष्ट हो जाते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शिक्षाष्टक के वो कौन दिग्दर्शनी टीका में, दिग्दर्शनी टीका या क्या है नहीं, उसमें इन्होंने दिखलाया है, कुछ कुछ हिंट दिया है। कितना सुंदर सुनाई, जगत सर्वम में एक चित्र ही वहां पर बना दिया है। कहीं कभी देखा दे वो चित्त चोर, भजन करते 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 नाम में वो डूब गए। उस समय में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हमने देखा एक कृष्ण नाम करते 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 एक श्याम रंग का एक बालक हमारे सामने में उदित हुआ, किशोर रूप, क्या ही मनोहर रूप, त्रिभंग रूप से किसी पेड़ के कदंब पेड़ के नीचे खड़ा है। हठात मैंने देखा उसको और मैं एकदम ठहर नहीं सका, मैं इसको पकड़ने के लिए दौड़ा, मैं चला तो वो भी पीछे पीछे हटने लग गया और जब एकदम पकड़ने चला तो इतने में अंतर ध्यान हो गया। तखन सुन्न धरातल चहु दिखे देखी प्राण उदास हय, तो प्राण मेरा उदास कहां गया, कहा गया, मैं भी मूर्छित होकर के जमीन में गिर गया, हाथ उदास करके रोने लग गया। इतने में देखा ये सामने फिर खड़ा है, जब देखता हूं तो उसके तरफ मैं दौड़ता हूं और नहीं तो जब देखता तो एकदम गिर जाता हूं, प्राण अब मेरा नहीं रह रहा। कितनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की, जो समझेगा वही समझेगा ये सब। इसलिए शिक्षास्त्रों को साधारण मत समझना, कंठ करना चाहिए जो साधक भक्त हैं और उसमें अखिल रस है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो महामंत्र है जितने भी कृष्ण के नाम है उन सब में जो नाम का रस है सब इसी के अंदर में और लीलाएं सब इसी में समाहित है, सबको क्रोड़ी कूद के ये नाम है, इसलिए साधारण नहीं है। हमारा भ्रम वो दूर हो गया गुरु जी की कृपा से, इन चीजों को ग्रहण करना चाहिए। अब चलिए प्रहलाद महाराज जी को यदि गृहस्थ जीवन निभाना है तो कुछ प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को सब समय अनुसंधान करना पड़ेगा। पिताजी और बट्टे बेटे में लड़ाई हो गई, ठन गई, बेटा कहता है खबरदार कृष्ण मत नाम लेना, पिताजी कह रहे हैं, और कैसा पिता, विश्व में उसके बराबर का कोई योद्धा नहीं है और सारे जोग उसके शरीर में है, वज्र का शरीर है, उसको ब्रह्मा भी नहीं मार सकते, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न कोई ब्रह्मा के बनाए हुए प्राणी उसको मार सकते हैं, रात में भी नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, घर के भीतर नहीं बाहर नहीं, रात में नहीं दिन में नहीं, किसी अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, कैसे भी नहीं मरेगा, पर क्रांत रूप में उसने अमर होने का वर ले लिया। और दूसरे तरफ में एक अबोध शिशु प्रहलाद महाराज जी हैं, वो पूछता है कौन सी शिक्षा तुमको अच्छी लगती है, वनन गता गतौ जदो हरि माश्रय, हरि का भजन करना ही सर्वोत्तम। बिगड़ गया, बेत लाओ इसे दुरुस्त कर दो, स्कूल में भेज दिया, फिर बुलाया तो जैसे अब ठीक सुधरा है, तहां सुधर गया है, अच्छा बतलाओ तो बेटा अब तुमको क्या अच्छा लगता है, तब उन्होंने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासख्यात्म निवेदन, ये सुनकर के ऐप पर गोदी से एकदम जो उसे पटक दिया। दूसरा होता तो मरी जाता किंतु प्रहलाद महाराज जी मरे नहीं। ये जो नौ हैं यही नौ धा भक्ति कहलाती है श्रवणम। आगे श्रवण करो गुरु मुख से, इसके बाद में कीर्तन, इसके बाद में स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास सख्य, आत्मनिवेदन, अंत में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन दो प्रकार का, शरणागति के अंतर्गत में जो आत्मनिवेदन है एक, और ये नौधा भक्ति के अंतिम में जो आत्मनिवेदन, दोनों एक नहीं है। इति पुरुषार्पिता विष्णु चे नौ लक्षण क्रियेत भवति अध्यात्म मन अधीत मुक्त मन। पहले भाई भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करके इन भक्ति को करना चाहिए, हमारे गुरु जी ने बतलाया हम लोगों को। ये पहला जो शरणागति वाला जो आत्मनिवेदन है, शरणागति के अंतर्गत में ये गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति करो, सेवक भगवान के प्रति, और निवेदन करके ये भक्ति करो। और नहीं तो वो जो संपूर्ण रूप में आत्मनिवेदन है, जैसे गोपियों का आत्मनिवेदन है, सखाओं का आत्मनिवेदन है, ये आत्मनिवेदन नहीं आएगा, वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। ये अभी प्रारंभिक है, ये शरणागति के अंदर में आत्मनिवेदन है ना, वो क्या है वो, हाँ अनुकूल से संकल्प प्राकुल विवर्जनम रक्षस्त इति विश्वास हो गोप्तुते वर्णम जथा आत्मनिक्षेप कर। आत्मनिक्षेप जो आत्मनिवेदन है वहां दीक्षा काले भक्त करे आत्मनिवेदन, किसके चरण में करता है, देखो तो गुरु जी के चरण में, किसके लिए, कृष्ण सेवा की प्राप्ति के लिए। इसलिए गुरु चरण में जब तक आत्मनिवेदन नहीं होगा तब तक भक्ति ही नहीं होगी, भक्ति से कोई संबंध नहीं। इसलिए गुरु जी के चरणों में आत्मनिवेदन, गुरु जी आप जो कहेंगे वैसा ही चलूंगा, कर तो नहीं पाता किंतु शारीरिक रूप से करने की चेष्टा करता है, मन से यदि हो तो और उत्तम, किंतु मन मन में कुछ अपने पास में साधक रखता है और कुछ देता है, जो अपने देने से कुछ हर्ज नहीं है वैसे तो गुरु जी को दे देगा। जैसे उसके पास में मान लिया कि 1000 रुपया है, अच्छा गुरु जी मैं अपना सर्वस्व देता हूं, तो उसमें से अपने लिए खाने पीने पहनने और एक महीना का रख करके गुरु जी को इसका 1% दे दो, 1% भी देता है तो उस तरह से अपना मन भी नहीं दे पाता है, किंतु फिर भी आत्मनिवेदन कहते हैं। किस लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं, किंतु सचमुच में ये दे दे, अनुष्ठानी रूप नहीं, अपने हृदय को गुरु जी जो कुछ कहेंगे वही मैं करूंगा, उनको प्रसन्न होने के लिए अपनी सारी जितनी एनर्जी है सब कुछ लगा दूंगा, तब तो गुरु जी दे देंगे, नहीं तो वो ठहरेगा कहां उनकी कृपा, उनकी कृपा ठहर नहीं सकेगी। ऐसा होना तब बड़ा भारी किंतु मुश्किल भी है, किंतु यही होना चाहिए। इसलिए दीक्षा काल में यदि ऐसा कोई संपूर्ण रूप से तन मन वचन आत्मा जो कुछ है उनके चरणों में यदि न्योछाव कर दे तो भक्ति हो गई, तब तो उसको अपना कृपा पात्र बना लेंगे, और नहीं तो वो क्या है उपनिषद का नायम नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य उनमेधया बहुना सुतेन जम एष एव विणुते तेन लभ्य तस्मय विभुणते तनुस्वान। उनके लिए संभव है जिन्होंने सरेंडर कर दिया स्वरूप रूप में। हम लोगों को गुरु जी ने कहा हम दीक्षा देना चाहते हैं तुम लोगों को, मुझसे कहा और अपने पास रखे, मैंने कहा जो ये शरीर हम आपको देते हैं लाल कपड़ा और संन्यास के संग, तो लाल कपड़ा देना है तो दीजिए, और यदि नंगा रखना है तो भी, यदि आप गृहस्थ जैसा रखना है सफेद कपड़े में रखना है, जैसा अब ये अब दे दिया है हमको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं। सुन करके बड़े प्रश्न आंख में से आंसू आ गए, मुनि महाराज जी थे, मुनि महाराज जी को बताया ये ठीक ऐसे करो, जगत का कोई भी चीज काम में नहीं आएगा किंतु उनके प्रति आत्मसमर्पण किया हुआ है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी के जैसा श्रद्धा होनी चाहिए, विपत्ति के समय में कभी उन्होंने नहीं कहा हे प्रभु विपत्ति से हमारी रक्षा की है, कई भागवत में लिखा है कभी अपने पिताजी के लिए उनके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो सर्वत्र ही अपने आराध्य को सब में देखते थे और कृष्ण में सबको देखते थे। जितने भी उनमें अपने भाव को, जो भगवान के प्रति भाव है, उसी को सब में देख, अर्थात मैं जैसे भगवान का भजन कर रहा हूं, ऐसे भी वो अपने प्रभु के लिए भजन करता है, ऐसा देखते थे। ये महापुरुषों का लक्षण है, महाभागवतों का लक्षण है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के परिकर या उनकी चरणों की सेवा करने वाले इसे संतुष्ट नहीं होते, इन चीजों से संतुष्ट नहीं, उनको कुछ और भूख रहती है और कोई चीज की पिपासा है। वो केवल ठहर जाओ दो मिनट, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु स्वर्ग दामोदर राय रामानंद से कहते हैं क्या, ये थोड़ा सा बतला करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। यही मथुरा की बात है, बहुत दूर की बात नहीं। कंस का अखाड़ा सजा हुआ है, बड़ी बदमाशी के साथ में षड्यंत्र करके अक्रूर के द्वारा अब वो छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण और बलदेव जी को लाया गया मारने के लिए। हाथी से मराओ, यदि नहीं होगा तो जितने मल्ल हैं चारों मुष्टिक इत्यादि सबको मिला करके, उसमें में नहीं मरता है तो जितने हम लोग सभी लोग हैं मिल करके उसको मथुरा में घेर करके मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी प्रकार से निकलने नहीं देंगे। उसने अपना चक्र व्यूह रचाया। क्या समय हो गया है? घोड़ी तो दिए चक्रव्यूह राजा आज इसमें से शत्रु किसी प्रकार से निकल ना पाए। वो ऐसा ही चक्रव्यूह किया जो गले में ऐसे सांप लटकाओ जो बिना काटे हुए रह ना सके। एक सोए हुए सांप को जगा करके अपने गले में लगाया और चूहा सा चिढ़ा दिया तो वो सांप क्या करेगा, काटेगा ही। कृष्णदेव कहां, बलदेव वहां नंदगांव इत्यादि ब्रिज में षड्यंत्र करके बुलाया मारने के लिए। चारु मुष्टक से जब युद्ध हो रहा था तो वहां की जो राजकुमारियां जो थी, जो स्त्रियां थी, जैसे धर्म सभा को धिक्कार है, जहां पर अच्छे आदमी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, छोटे बच्चों से कंस लड़वा रहा है चारु मुष्टि को, कहां पहाड़ दैत्य दानव और कहां ये दूध मुख्य छोटे से बच्चे, नन्हे नन्हे सुकुमार सुकोमल जिनके मुख है, पैर हैं, अंगुलियां हैं, हाथ है, ये सब, ये तो पकड़ेंगे तो पीस डालेंगे। और उनके लिए लड़ाई करने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए और देश दे दिया। उस समय में गोपियां अब यहां रहना अधर्म लगेगा। और कृष्ण के बलराम के तप देकर के कहने लगी, अहो ब्रज रानी, ब्रज की जो रहने वाली रमणियां हैं उन्हीं का शोभा, जो कृष्ण को स्वच्छंद गति से वन में विचरण करते हुए गौओं के पीछे है? जहां पर कि जमुना सुंदर सुंदर धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें कमल के फूल खिल रहे हो, जिसके किनारा कैसा है उपमन, उसी में सेवा कुंज है, निधवन इत्यादि है, और उसमें मयूर कहुक रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, कोयल कुहक रही है, सुखसारी का द्वंद चल रहा है, और चारों तरफ में सुगंध भरा पड़ा है, धीर समीर बह रही है? उसमें कृष्ण को भ्रमण करते हुए देखते हैं गोपियों के द्वारा परिवेष्टित, सखाओं के द्वारा परिवेष्टित, मत्त गजराज के सावक की भांति विचरण करते हुए देखती हैं। और हम यहां पर आबद्ध, यहां पर चारों से शत्रुओं का प्राण हरण करने के लिए घेरे हुए हैं। कभी कभी कृष्ण और बलदेव इस प्रकार से उनसे लड़ रहे हैं, मुख आवरण मने लाल, कभी कभी कुछ हो रहा है इनके साथ में, और उसी समय में कह रहे हैं, देखो ये ब्रज की गोपियां कैसी धन्य हैं, जादोहने व मतने मथलोपने प्रिंखनाभिदितो ओखन मार्जनादो गायंत गोप्या अनुरक्त धियो अश्रुकंठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना। ये हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। घर में रहने पर वो कह रही है ब्रज सुंदरियों की सौभाग्य की सीमा का वर्णन करते हुए कह रही हैं, ओह ब्रज की स्त्रियां कैसी धन्य है, जादोहने मथने जादोहने वाहनने मथनोपलिक, जादोहने गायों का दोहन कर रही हैं, गाय किस लिए, कृष्ण के लिए मक्खन होगा इसलिए। और उस समय करती क्या है, उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम के चित्त की जान बहन बनी हुई है। उरुक्रम जो है, उरुक्रम कौन, उरु जिनके क्रम है वो कौन है, कृष्णचंद्र राधा राधानाथ है, गोपी जन वल्लभ है, वो गोपीनाथ है, ये उरुक्रम है। तीन बड़े लंबे लंबे पैर और बड़े विक्रमशाली नहीं, समस्त रसों के मूल आधार जो है वो उरुक्रम, ऐसे उरुक्रम जिन गोपियों के चित्त के जान, दो अर्थ, कृष्ण के चित्त पर वो आरूढ़ हुई हैं, कृष्ण का चित्र ही हो गया है जिनका वाहन, उस चित्त के ऊपर में दिन रात गोपियां चढ़िया तत् कृष्ण सब समय उनकी चिंता, कृष्ण चिंता निवेशन, कृष्ण उनकी चिंता दिन रात करते हैं, ऐसी गोपियां हैं, कृष्ण के प्रेम का विषय बनी हुई है, विषय है गोपियां और कृष्ण है आधार आश्रय, ऐसी गोपियां। और दूसरा उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम ही उनके चित्त रूपी जान वाहन पर सब समय आरूढ़ हैं, वो कभी उतरते नहीं, कृष्ण को इतना सुंदर लगता है उनका चित्त आधार पर बैठना जो कभी छोड़ नहीं पाते, सब समय कृष्ण को तन्मय होकर के अपने चित्त रूपी जान वाहन पर बैठा रखी, कभी उतारती नहीं है। कैसे, जादोहने वहनने मथनो पलेप, कैसे दोहन कर रही है और चित्त कहां है, स्तन पर नहीं है उनके गायों के, चित्त कहां है, श्याम सुंदर के पास में, गोविंद दामो दर्माधवेति, गोविंद दामो दर्माधवेति, गोविंद दामो दर्माधवेति, वो दुखले संघंटयंतो मुसलई प्रमुग्धा गायंति चैनम अनुरुक्त धिया, याद नहीं आ, गायंति गोप्या जनता अनुरागा गोविंद दामो दर्माधवेति, गोविंद दामो दर्माधवेति, गोविंद दामो दर्माधवेति, हाथ से छूट गया, बर्तन भी नीचे गिर गया, कहां है ये दूध की दोहनी और कहां कहां सब कुछ बिसर गए, कृष्ण उनके चित्त पर आरूढ़ हो गए। ऐसे ही कोई लिप रही है घर को, ऐसे ही गृहस्थ भक्त लोग इसको समझेंगे, रसोई बनाने के समय में उनकी पत्नियां ऐसे ही करें, बस तवा पर रोटी रख दिया और इधर में तन्मय होकर के गोविंद दामो दर्माधि, वो रोटी जलेगी नहीं यदि एक घंटा भी रह जाए, डलने का डर नहीं है इसलिए तन्मय होकर के रहे, घर का काम बिगड़ जाएगा, बन जाएगा जीवन बन जाएगा, ऑफिस में जाने में लेट हो जाएगा, गोपियों का काम कोई बिगड़ा, कोई भी काम नहीं बिगड़ा। एक बच्चे को लिया पलंग पर लिटा करके पलने पर झुला रही है और गा रही है क्या, थप थप, गोविंद दामो दर्माधवेति, सब काम गोविंद दामो दर्माधवेति, सब समय कृष्ण के में तन्मय हो रही, कोई दधी लेकर के जा रही है कहीं तो एकदम तन्मय होकर के हाथ से भी छोड़ गया, एकदम भाव में आविष्ट हो गई, ये तो भक्ति है ना। महाप्रभु जी कह रहे हैं यदि हो तो जीवन ऐसा बनाओ, अब इसे बढ़कर के क्या उपदेश हो सकता है, ये तो दामोदर जी के लिए गोविंद दामोदर, और जो महाप्रभु रूपानुभ है वो क्या करेंगे, राधा कृष्णमयो हरि, कृष्ण क्या है वो, राधा स्थिता चित्त स्थिते राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधनम निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम, कृष्ण के हृदय में राधा जी स्थित हैं, और राधा जी के हृदय में कौन स्थित है? कृष्ण। ऐसे जो राधा और कृष्ण हैं, जीवन में मरण में जैसे भी हो, हमारे हृदय से कभी बाहर हो जाए। और थोड़ा सा ऊपर उठो, एक सीढ़ी और, तब क्या, तब क्या हो
है?
एक घंटा बेसी में से एक एक श्लोक बस ला करके बहस समाप्त। तथी वो करेगा क्या, वो क्या है भाई, जब जब हृदय जब जब जपू तो राधा जी का नाम, जब चिंतन करूं तो राधा जी का, हाँ, स्मरामि राधाम भजामि राधाम अरविंद नेत्राम स्मरामि राधाम बदामि राधाम करुणा भराद्रम ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। बस इस तरह से ये साधन के क्रम है, भजन के क्रम है। संक्षेप में आप लोगों को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक दिग्दर्शन करा। इसमें गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त हम सभी लोग इसको अनुकूल लेकर के चलेंगे, साधन भजन करेंगे, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब हम लोगों का यहां पर आकर के नियम सेवा कार्तिक व्रत ऊर्जा व्रत करना सफल हो जाएगा। मैं राधा विनोद बिहारी से सबके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए भी प्रार्थना, पीछे करूंगा पहले आप लोगों के लिए, महाराज जी भी प्रार्थना, हम अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं जो सबका कल्याण करें। ये सब भाव कुछ कुछ लोगों के हृदय में है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो
नमो महाबदंडाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
बरादलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे मुमस्ते चरणारविन्दं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमान चरणान्तिके।
हरिनाम चिंता मंदिर अंतर्गत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, यही है भजन रहस्य में लिखी। हरिनाम चिंतामणि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाशित ग्रंथ, तारी अंतर्गत धर अथवा तारी परिशिष्ट, और मध्य जा कुछ थेके गलो परवर्ती काले के तहां के संयोजन करे छे परिशिष्ट। एटा के आठ जामेर भजन बोलछेन, तार मध्य प्रथम जाम होच्छे प्रथम जामेर साधन प्रथम अध्याय। जे रकम हमें एक लोग गभीर निद्राते शयन करे छे, खूब गभीर निद्राते शयन करे छे, से समय खूब जोर करे कुक्कुट, कुक्कुट माने ताम्र पिच्छ, ताम्र पिच्छ काके बोले मुर्गी, उधर ओरा मुर्गी बोले हमारा बोली ताम्र पिच्छ, खूब जोर करे कु 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 इत्यादि करते लारो। निकटे मने काने थे,
সেই সময় একটু নিদ্রা আবেগটা একটু কম হলো, কিন্তু এটা কখন হয়? যখন রাত্রির শেষ ভাগ, তখন চন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার সমাজকে নিয়ে একটু পলায়ন করতে লাগলেন আকাশ থেকে। ধীরে ধীরে তারাগণ অন্তরহিত হতে লাগল, আর চন্দ্র লজ্জাতে একটি মুখ আচ্ছাদন করলেন। ধীরে ধীরে এই কুকুট সব থেকে প্রথমে আগে উঠবে, জোর করে দিয়ে বলতে লাগলো। তখন গভীর নিদ্রা ছিল, সেইটি একটু কমে গেল। ইতিমধ্যে কোয়েল কুহু কুহু জ্বরে জোর করে শব্দ করল, এই বৃন্দাবনে থাকলেই দেখব। ইতিমধ্যে কে কার শব্দ হতে লাগলো। তখন নিদ্রার আবেশ আছে, নিদ্রার আবেশ আছে, বিছানার উপরে আছে, কিন্তু ঘুমে ভর অভি যাচ্ছে না। ঘুম কা যো আবেশ হ্যায় নশা, ও অভি পুরা তরহ সমে যায়। ইতনে মে পুজারি জি নে জোর সে ঘন্টা বজায়া, তবে দেখলে অভি মঙ্গল আরতি আরম্ভ নেই হুই, থোড়া সা অর সোলে। ওই সময় তো একটু অন্ধকার থাকে, অন্ধকার রহতা ওই সময় থোড়া থোড়া, অমস্যা কা নিশা কা যে অন্ধকার হয় ও তো নেই হব। সূর্য কা প্রাতকালীন যে রশ্মি সবক, ওইটা ধীরে 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 পূর্ব দিশাতে একটা উদ্ভাসিত হতে আরম্ভ হয়েছে,
সূর্য উদিত হয় না,
কিন্তু তারা ভাইস আসতে লাগে। কিন্তু এখন যদি উঠে যদি কেউ চলে, এত নেশার খুমারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যদি চলে তাহলে রাস্তা দেখা যাবে না, কিন্তু শব্দ পাচ্ছি কি সাধু সন্ত হরে কৃষ্ণ ওই সময়তে কীর্তন করছে, মঙ্গল আরতি এটা আরম্ভ হল, কানেতে পড়তে লাগলো। কিন্তু আমি রাস্তা ঠিক হয় সকালবেলা, আর নিদ্রার খুমারিও আছে, এরই নাম হচ্ছে নিশান্ত। ওই সময়তে যদি চলে কেউ অনুরোধ, ওই সময়তে রাত্রিকাল থাকা জন্য, অন্ধকারী থাকা জন্য সর্পের ভয়, যদি বন জঙ্গল থাকে তাহলে ব্যাঘ্র ভাল্লুকের ভয়, আর ভূতের ভয় কতগুলি লোকের হয়। এইগুলি কি হচ্ছে? এইগুলি হচ্ছে অনর্থ, অনর্থ পুরা রূপেতে আছে। এই অনর্থের অন্ধকার হরিগুরু বৈষ্ণব জাগাচ্ছে আমাদের, প্রতিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্ত পরাণ নিবোধক দূরত্ব ধারা নিশিতা দূরত্যা, নিশিতা দূরত্যা ঘুম, নিশিতা মানে কে এখানে অন্ধকারকে দূর করে, ঘুমকে দূর করে দিয়ে বরাক নিবোধক, বরাণ মানে কি যারা শুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব মুক্ত মহাপুরুষগণ, বরাক নিবোধক বুঝ পরতত্ত্ব কি, কিসের জন্য জগতে এসেছ, এইসব বৈষ্ণবগণ গুরুবর্গ এই বলছে। কিন্তু আমরা আবি শ্রদ্ধাপূর্বক যে পথে যে চলার অভি যোগ্যতা হয় না, এই জন্য সামান্য একটু শ্রদ্ধা আসছে, তার মধ্যে আবার ভয় আছে, অনর্থগ্রস্ত আমরা, কুটি নাটি জীব হিংসন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ওই সময়তে প্রচুর পরিমাণে আছে। এখন অভি হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, অভি দেশ দিশা নির্দেশ অভি সম্বন্ধ জ্ঞান উদিত হয় না, এই হচ্ছে নিশান্ত ভজন, শ্রদ্ধাটা একটু আসছে। ওই শ্রদ্ধার সময়তে যদি সাধু সঙ্গ যদি হয়, আর সাধু সঙ্গ ফলেতে গুরু পদাশ্রয় যদি হয়, তারপরে দীক্ষা ইত্যাদি হয়, দীক্ষা পরে ভজন ক্রিয়া যখন আরম্ভ হবে, তখন অনর্থ ধীরে ধীরে দূরে হয়ে নিষ্ঠা ক্রমে রুচি আসক্তি ভাব ইত্যাদি হবে। এই হচ্ছে প্রথম নিশা। প্রায় কৃষ্ণের যে নিশান্ত লীলা ওর সঙ্গে একটা সমদৃশ আছে, সমানতা আছে এর মধ্যে। এই যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন যে এই নিশান্ত ভজন শ্রদ্ধা উন্মেষ একটা মাত্র হয়েছে, কিন্তু এখন অভি ভয় আছে কিসে? কুসঙ্গের ভয়। স্বতন্ত্র হয়ে চলে তাহলে পথ নির্দেশ এই দিকে যে জ্ঞান কর্ম যোগ ইত্যাদি দিকে চলে যেতে পারে। নিশার কুমারী অভি হরিভজনেতে আলস্য প্রমাদ ইত্যাদি আসলে ভক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন ওই আটটা না সাতটা অবস্থা মাধুর্য কাদম্বি নিগত কি, প্রথমটা উৎসাহময়ী ঘন তরলা বুড় বিকল্পা তরঙ্গ রঙ্গিনী বিষয় সঙ্গরা নিয়মাক্ষমা ইত্যাদি জেনে শুনে পুরা কথা। এক লাখ হরি নাম আমি কাল থেকে নিশ্চিত করব। আমি মনে করি যে দু চার ফেরা হয়েছে, ইতিমধ্যে কোন লোক এসে গেল, কোন এদিকে হয়ে গেল, ঘুম লেগে গেল, শরীর খারাপ হয়ে গেল, আর করতে পারলাম না। কাল থেকে আমি বৈষ্ণব সাধু সঙ্গেতে থাকবই নিশ্চিত, করে উঠতে পারি না। আমি চারটার সময় জেগে যাব, আর পরের দিনেতে দেখে যে শরীর অসুস্থ হয়ে গেল। নিয়ম ক্ষমা ইত্যাদি বিষয় সঙ্গে যুদ্ধ, কখনো হারে কখনো জিতে, কখনো উৎসাহ কখনো ঘন্তরলা ইত্যাদি, এগুলি হচ্ছে অনিষ্টিকা অনিষ্টিতা ভক্তি নিষ্ঠা উৎপন্ন, এইটাকে বলছে শ্রদ্ধা। শ্রী ভক্তি মনোহর ঠাকুর বলছেন যে সে ওই সময়তে যদি সাধু সঙ্গ সে পায় শুদ্ধ রূপেতে, গুরু পদাশ্রয় ওই সময়তে হয়, তাহলে এইরকম হতে উন্নত হবে। কিরকম? কৃষ্ণ বর্ণম তৃষা কৃষ্ণম সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায় যজামি কলিপামনম প্রায় যজন্তি হি সুমেধ শাশ্বত ভাগবতের। এখানে বললেন কি ভজামি কলিপামনম, ওখানে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে, এখানে শিল ভক্ত বিনোদ ঠাকুর কলিপামন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করছেন ওই প্রাতকালে। ওই সময়তে শ্রদ্ধাপূর্বক যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা ভাব দূত সবলিত যে গৌরচন্দ্র তাহাকে আমি নমস্কার করছি বলছেন, তো কৃষ্ণ বর্ণন যিনি কৃষ্ণ সব সময় বর্ণন করছেন, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি, কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ 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 হে ইত্যাদি, রাম 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 হে আছে, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমান রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহিমা কৃষ্ণ 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 ইত্যাদি যিনি সব সময় বর্ণন করছেন, কৃষ্ণ হয়েও কৃষ্ণ বর্ণন করছেন। তৃষা অকৃষ্ণ, তার গায়ের রঙ কিন্তু অকৃষ্ণ, অকৃষ্ণ মানে পীত। শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ এটাকে প্রমাণ সহিত শ্রীমৎ ভাগবতের প্রমাণ সহিত এটাকে বর্ণন করছেন, তিনি পীত, তিনি শ্রীমতী রাগিকা অঙ্গকান্তি উড়ে নিয়েছেন, আর সাঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্শ্বদম স অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্শ্ব এই চারটি যুক্ত হয়ে কলিযুগেতে অবতীর্ণ হয়েছে। স অঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভু, উপাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য, অস্ত্র হরিনাম, পার্শ্ব গদাধর সুভাষবাদী পণ্ডিত ইত্যাদি রায় রামানন্দ প্রভৃতি এইসব পরিকর যুক্ত তিনি এসেছেন। এই যে চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা ভাব দূত সুবলিত কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ শ্রী গৌরীচন্দ্রকে আমি যজ্ঞই সংকীর্তন, সংকীর্তন যজ্ঞেতে প্রায় মানে সব সময় আমি ভজন করি। তিনি কলিযুগের পাওন পবিত্র কারী, তিনি আহত কি করুণা বর্ণাল। এইখান থেকে তিনি আরম্ভ করলেন, যদি ভজন করবার লালসা হয় তো চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাহার পরিকরগণ, আর পরিকরগণের সঙ্গে হরিনাম কে আরম্ভ করবে, হরিনাম অবলম্বন করবে, তাহলে তার কল্যাণ হয়, তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যে ক্রমে ক্রমে বর্বে ভজনেতে। আবার তিনি স্তবাবলী রঘুনাথ দাস গোস্বামী না রূপ গোস্বামী দাস গোস্বামী, তিনি একটা শ্লোক লিখছেন, নিজত্বে গৌরীয়ান জগতি পরিগৃহ্য প্রভু ইমান হরে কৃষ্ণাত্তেবম গণ বিবিধিনা কীর্তয়ো ইতি প্রায়ং শিক্ষণ চরণ মধুপে পরিদিশন সচী সুনুন কিংলে নয়ন সরণিম জাসতি পদ। প্রার্থনা জানাচ্ছেন ওই, এটা হচ্ছে মঙ্গলাচরণ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মঙ্গলাচরণ করছেন, যেরকম হতে রূপ চৈতন্য চরিতামৃতকার রূপ গোস্বামীর অনর্পিত চরিং চিরাতে শ্লোক দিয়ে নন্দীমুখী আর তাহার মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করে। ওই রকম হয় ইনিও শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এই মঙ্গলাচরণ সচিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি নিজের হৃদয়েতে আর আবার তাহার চোখের সামনেতে কখন আসবেন, কখন তিনি দর্শন দিবেন, এরকম ভাবে প্রার্থনা করছেন। নিজত্বে গৌরীয়ান জগতি পরিগৃহ্য, গৌরীয় বৈষ্ণবগণকে নিজের আমার নিজের এরকম ভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন, বরণ করেছেন। যখন চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে আর গৌড়িয়া বৈষ্ণবগণ সব যাচ্ছে জগন্নাথ দর্শনে, জগন্নাথ দর্শনে না, যদি জগন্নাথ দর্শনে যেত তো প্রথমে মহাপ্রভুর কাছে যেত না, মহাপ্রভু গম্ভীর আছে তারা যায়, আর ওখানে রাস্তাতে পড়ে ওটাকে দাহিনী দিকে রেখে দিয়ে মহাপ্রভু গম্ভীর আছে যায়। নিত্যানন্দ প্রভু অন্যান্য সব অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গে যারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সব আসে, লক্ষ লক্ষ লোক সব আসে, জগন্নাথ দেবকে বাদ দিয়ে মহাপ্রভু কাছে এসে উনাকে প্রণাম করে উনার তারপরে গেল জগন্নাথ দেব কাছে। মহাপ্রভু কি করছেন, তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, কে কে আসছে, আমার ভক্তরা আসছে, আমার জন আসছে। আর মহাপ্রভু নির্দেশ করে দিয়েছেন কাশী গোপীনাথকে, তুমি এদের ওদেরকে বুঝিয়ে দাও যে কে কে লোক উপরে অট্টালিকাতে যে আর বুঝাচ্ছে। ইনি মহারথী নিত্যানন্দ প্রভু, ইনি হচ্ছেন অদ্বৈতাচার্য, আর তাদের পরিচয় দিচ্ছেন, এরকম তো সমস্ত ভক্তগণের পরিচয় তারা দিচ্ছে। মহাপ্রভু তাহাকে নিজে মনে করেন যে সে আমার এরা, এই জন্য